कक्षा 8 पाठ 3 बस की यात्रा। जैसे कि पाठ के नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पाठ किसी बस की यात्रा के बारे में है। इसके लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। ये पाठ साहित्य के व्यंग विधा पर आधारित है। इस व्यंग में आपको पूरा आनंद आएगा और आप अगर शब्दों पर ध्यान देंगे तो आज आपको हंसने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। आप सभी ने कभी न कभी तो बस की यात्रा अवश्य की होगी। आपके स्वयं भी अच्छे और बुरे अनुभव होंगे, तो आज इस पाठ में आपको कुछ ऐसे ही खट्टे मीठे अनुभवों का आपको स्मरण होगा और आपको स्वयं भी बहुत अच्छा लगेगा। ये पाठ निबंध शैली में लिखा व्यंग है। इस पाठ में व्यंग क्या है अब ये आप जान लीजिए। लेखक ने पुरानी बस के माध्यम से यातायात के साधनों में जो खस्ता हालत है उस पे व्यंग किया है। बस कंपनी वाले जो अपनी बसें चलाते हैं उनके लालच और स्वार्थ पर व्यंग कसा गया है। लोग जब टूटी फूटी खस्ता हालत में बस में सफर करते हैं तो किस प्रकार का हास्य व्यंग होता है या किस प्रकार की परेशानियां होती हैं इस पाठ में दिखाया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब लेखक के बारे में जान लेते हैं। लेखक हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त सन 1924 में मध्य प्रदेश के जमानी होशंगाबाद जिले में हुआ था। ये हिंदी के प्रसिद्ध और सफलकार व्यंगकार माने जाते हैं। ये हिंदी के पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग को भी साहित्य के एक विधा का दर्जा दिलवाया। साहित्य की विधा, विधा मतलब राइटिंग फॉर्म। इन्होंने लोगों को हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से उबार कर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा। इनकी व्यंग रचनाएं हमारा मनोरंजन ही नहीं करती अपितु हमें सामाजिक वास्तविकताओं का आमना सामना भी करवाती है। लगातार खोखली होती जा रही हमारी सामाजिक और राजनैतिक व्यवस्था के बीच मध्यम वर्गीय के कष्टों को भी इन्होंने दिखाया है। इन्होंने हमेशा से ही रूढ़िवादी नकारात्मक जीवन मूल्यों की खिल्ली उड़ाई है और हमेशा विवेक और विज्ञान सम्मत दृष्टि को अपनाया है। वैसे तो उनकी बहुत सारी रचनाएं और सारी रचनाएं प्रसिद्ध हैं, परंतु कुछ रचनाओं में जैसे कहानी संग्रह में हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे या भोलाराम का जीव, उपन्यासों में रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल, यही नहीं इन्होंने बहुत सारे संस्मरण भी लिखे हैं, लेख संग्रह भी है। एक विशेष लेख जो आप कक्षा 9 में पढ़ेंगे, प्रेमचंद के फटे जूते, जो बड़े ही रोचक ढंग से प्रेमचंद के सादे जीवन के बारे में वर्णन किया है। इन्होंने बड़े ही रोचक ढंग से किया है, वो आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे। इनका जो एक लेख है विकलांग श्रद्धा का दौर, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिल चुका है। इनकी मृत्यु 10 अगस्त 1995 को हुई। तो ये था लेखक परिचय। अब हम आगे बढ़ते हैं, पाठ के लिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले जरा ध्यान से बाई ओर की बस को देखिए, बिल्कुल टूटी फूटी, जिसकी हालत पूरी तरह से खराब है। सामने का बोर्ड टूटा हुआ है, पहिए घिसे हुए हैं, खिड़कियों के जो कांच है वो टूटे हुए हैं, टायर या पहिए जो भी पूरी तरह से एकदम घिसे हुए दिख रहे हैं। तो आज हम जो पाठ पढ़ेंगे, जैसे आप समझ रहे हैं कि इसी बस पर आधारित पाठ को पढ़ेंगे, तो पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम की 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। अब इसके बारे में समझ लेते हैं। लेखक और उसके चार मित्रों ने मिलकर यह तय किया कि उन्हें 4 बजे की बस से जाना है। कहाँ जाना है? जबलपुर, जो मध्य प्रदेश में है, और पन्ना भी मध्य प्रदेश में ही एक जगह का नाम है जहाँ से लेखक को जाना है। इसी पन्ना से सतना के लिए उन्हें बस 1 घंटे बाद मिलेगी, जो सतना स्टेशन तक जाएगी और वहाँ से वह जबलपुर जाने के लिए ट्रेन पकड़ लेंगे। यह उन 5 दोस्तों ने तय किया। अब समझ में आ गया, उन्हें जाना तो है जबलपुर। तो वास्तव में उन्हें यही रास्ता इसलिए अपनाना था क्योंकि इन 5 दोस्तों में से 2 लोगों को सुबह ऑफिस भी करना था। उन्होंने सोचा होगा कि जबलपुर जाकर वापस भी आ जाएंगे, मतलब रात भर में उनकी योजना जो भी कहीं जाने की है वो हो जाएगी पूरी। तो आगे पढ़ते हैं। बस को देखा तो श्रद्धा उमर पड़ी, खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थे। लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? देखिए लेखक ने कितना अच्छे से व्यंग किया है कि जब उसने बस को देखा तो उसके मन में श्रद्धा उमड़ पड़ी। श्रद्धा किसके लिए बच्चों उमड़ पड़ती है? जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जिनको देख के लगता है कि नहीं, बस इनको बिठाकर इनकी सेवा करनी है, इनकी पूजा करनी है, इस तरह के लोगों के लिए श्रद्धा होती है, जिनके लिए हमें मन में बड़ा आदर सत्कार होता है। तो लेखक ने यहाँ व्यंग किया है कि बस खूब वयोवृद्ध थी। वयोवृद्ध मतलब बहुत बूढ़ी, जिसकी बहुत उम्र हो जाती, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए, यानी बहुत सालों से चल रही है, चलते चलते अनुभव हुआ है उसको। तो जैसे वो जो टूटा फूटा है ना, वो उसके अनुभव का निशान है, इतना चल चुका है वो। लोग इसलिए इसमें सफर नहीं करना चाहते थे कि इसे वृद्धावस्था में कष्ट होगा, यानी कि इस बूढ़े लोगों के ऊपर हम अगर सवार हो जाए तो उन्हें तकलीफ होगी ना। इसलिए लेखक इसको व्यंग कर रहा है कि ये बस पूजा के योग्य है, ऐसा बस तो सिर्फ रखकर उसकी पूजा करो, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। यहाँ पर लेखक ने बस वालों की व्यवस्था पर व्यंग किया है कि इस तरह की बस जिसका नवीनीकरण कराना चाहिए उसको चला रहे, अभी भी उसको लेकर लोगों को लेकर उसको जाने के लिए कहा जा रहा है, मतलब ड्राइवर को भेजा जा रहा है, उसको यात्री उस पर सवार हो रहे हैं और कहीं जा रहे हैं, जबकि इस बस की तो ऐसी बुरी हालत है, इसको किसी भी हालत में नहीं चलाना चाहिए। या तो इसका नवीनीकरण कराए या फिर उस पर जो भी है रख दे, उसको बंद कर दे ऐसी बस को चलाना। इसलिए उसने कहा बस पूजा के योग्य। ये देखिए बच्चों किस तरह का व्यंग उसने किया है, इसको थोड़ा समझिए। तो आगे की तरफ पढ़ते हैं। बस कंपनी के हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा यह बस चलती भी है? वो बोले चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है? हाँ जी, और कैसे चलेगी। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है? लेखक ने उसे मजाक, देखिए कितना सुंदर व्यंग किया उन्होंने। बस कंपनी के हिस्सेदार थे, वो भी उस बस में जा रहे थे। अब लेखक ने उनसे पूछा भाई ये बस चलती भी है? इतनी खटारा हालत थी बस की कि देखकर उन्हें पूछ बैठा। तो बोले हाँ क्यों नहीं चलती है। बोले यही तो हम देखना चाहते हैं कि ये बस अपने आप चलती है। तो उसने कहा और कैसे चलेगी। मतलब लेखक को भी संदेह हुआ कि इतनी पुरानी टूटी फूटी बस क्या अपने आप चलती है, यानी कि इसको धक्का देकर भी नहीं चलाया जा सकता। और इसको हिस्सेदार, बस कंपनी के हिस्सेदार बोले हाँ चलती है। अब लेखक बोलता है गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। लेखक को बहुत हैरानी हुई कि इस तरह की बस अपने आप चलती, उसने इसीलिए कहा, गजब हो गया कि ऐसी बस अपने आप चलती है। अब लेखक कह रहा, हम आगा पीछा करने लगे। आगा पीछा करना मतलब एक मुहावरा है, इसका मतलब होता है निर्णय ना ले पाना कि करें या ना करें, जाएं या ना जाएं। तो वो सोच में था कि एक उसके डॉक्टर मित्र भी थे बस जा रहे, तो बोले डरो नहीं, बस अनुभवी है, यानी जितनी उम्र है उतना अनुभव होता है, इतने सालों से चल रही है तो इसको बहुत अनुभव है, और नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है। नई नवेली का यहाँ पर व्यंग किया गया है, क्योंकि जो आजकल नई नई चीजें बनती हैं उसमें क्वालिटी कम रहती है, चीजें उतनी बस किसी तरह से लोग बना देते, कहते ना पुरानी पुरानी मशीनें जो चल रही हैं अभी भी बहुत अच्छी चल रही हैं। तो आजकल के जो चीजों का निर्माण लोग करते हैं उतना ज्यादा उस क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया जाता। इस बात को उसने व्यंग किया है कि नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, यानी कि जो पुरानी चीजें हैं उनको ज्यादा अनुभव होता है, वो ज्यादा अच्छे से चलेगी। कह रहा हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। उसने समझाया कि भाई जो बॉय वृद्ध हो चुकी है, बूढ़ी हो गई है, तो भाई उसके ऊपर हम बैठेंगे तो ऐसा हमको महसूस होगा कि जैसे हम गोद में बैठ के जा रहे हैं। इसके बाद पढ़ते हैं आगे, हम बैठ गए, जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हों। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, जो आया है सो जाएगा। राजा, फंक, फकीर, आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। अब जब सबने कहा, लेखक बस के हिस्सेदार ने कहा, हाँ चलेगी क्यों नहीं, बिल्कुल चलेगी। फिर इधर डॉक्टर मित्र ने भी कहा कि भाई बस बड़ी अनुभवी है। ये सब सुनकर लेखक सोचा, चलो ठीक है। उन पांच मित्र बैठ गए बस में। कह रहे हैं कि बस में जब वो बैठ गए तो जो लोग उनको छोड़ने आए थे, यानी सेंड ऑफ करने आते ना बहुत लोग, तो वो उन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे वो अंतिम विदा दे रहे हो, जैसे वो वापस ही नहीं आने वाले, और उनकी आंखें कह रही हो कि भाई आना जाना तो लगा रहता है, जो आया है सो जाएगा। तो आना जाना लगा रहता है, इस दुनिया में आना जाना लगा रहता है। वो व्यंग कर रहे हैं, कहने का अर्थ है कि जो इस धरती पे जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, तो इसलिए जो आया है वो जाएगा ही, चाहे वो राजा हो या रंक हो या फकीर हो। तो यहाँ पर राजा का मतलब तो आप जानते हैं, बड़ा कोई भी किसी से ले लीजिए, राजा है किसी देश का या फिर कोई बहुत बड़ा सेठ है, पैसे वाला है। और रंक का मतलब होता है भिखारी, फकीर जैसे आप देखते ना सन्यासी लोग जो घूमते हैं, खास करके मुस्लिम समुदाय के जो सन्यासी होते हैं उनको फकीर कहते हैं। तो इनके बारे में उसने कहा कि ये चाहे बड़े आदमी हो या गरीब हो, कोई भी हो, आना जाना तो है ही, मृत्यु जिसको आएगी तो उसको जाएगा ही, वो तो पैसे वाला है बोल के तो बच नहीं जाएगा। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि आदमी को कूच करने के लिए निमित्त चाहिए। कूच करना मतलब जाना, निकलना, ये भी एक तरह का मुहावरा है। निमित्त का मतलब होता है कारण या बहाना। अगर हमको मरना है या किसी को मरने का एक ना एक कारण मिल ही जाता है। वो कहना चाह रहे हैं कि बस में जा रहा है, जिस तरह से ऐसा लग रहा था वो कभी वापस आएंगे ही नहीं, और इसलिए वो व्यंग करके कह रहे हैं कि लोगों की आंखें ऐसा कह रही थी जैसे वे हमें अंतिम विदाई दे रहे हो, और कह रहे हो भाई आना जाना तो लगा ही रहता है संसार में, क्या है जो आएगा वो जाएगा ही, चाहे वो राजा हो, रंग हो, फकीर हो। तो इसीलिए वो इस तरह से उनकी आंखें कह रही थी, और मृत्यु के लिए मरने के लिए तो सिर्फ एक बहाना चाहिए, निमित्त मात्र ही चाहिए। लेखक इस तरह से व्यंग करता है। इसके बाद आगे का पैराग्राफ पढ़ते हैं, इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। ऐसा लगा जैसे सारी बस ही इंजन है और वह इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। तो सचमुच लेखक कह रहा है वो बैठे जैसे सोच रहा था कि बस चलेगी ही नहीं, तो उसने देखा कि सचमुच इंजन तो स्टार्ट हो गया। लेकिन इंजन स्टार्ट होने के बाद ऐसा लगा कि जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे। कहने का अर्थ है कि जब बस स्टार्ट होता है, शोर होता है बस में, वो शोर इंजन में होता है, कंपन जो भी होता है इंजन में ही ज्यादा होता है, पूरी बस में नहीं होता, क्योंकि ये बस टूटी फूटी थी इसलिए पूरी बस हिलने लगी, पूरी बस में शोर जैसा हो गया। तो इसीलिए लेखक ने कहा कि ऐसा लगा कि हम इंजन में ही बैठे हुए, मैंने इंजन के अंदर बैठे, बस में नहीं बैठे। और फिर कांच के बारे में कहते हैं, कांच बहुत कम बचे थे, यानी शीशे टूटे हुए थे, और जो टूटे हुए थे उनसे उन्हें बचना था, यानी कि जब बस चल रही है, जो टूटे फूटे कांच है वो हिलेंगे, फिर टूट के आकर लेखक को लगेंगे या जो बस में बैठे हुए, तो इसलिए जो बचे हुए थे कांच वो भी खतरा ही था उनके लिए, इसलिए उनसे वो बचकर बैठना था, उन्हें खिड़की से तुरंत दूर सरक कर बैठ गए। इंजन चल रहा था, उन्हें कैसा लग रहा था कि जैसे इंजन उनकी सीट के नीचे इतना हिल रहा था, इतनी आवाज कर रहा था। तो इस ये बस की हालत थी, लेकिन लेखक ने जब तय किया है तो जा रहे हैं वो। तो अब इसके आगे का जो है बच्चों, हम अगले भाग में पढ़ते हैं। कक्षा 8 पाठ 3 बस की यात्रा भाग 2। बच्चों, भाग 1 में आपने पढ़ा कि लेखक और उसके 4 मित्र एक टूटी फूटी बस से यात्रा करने की योजना बनाते हैं। उस बस की क्या हालत थी और लेखक ने उस बस पर किस तरह के व्यंग किए थे, ये सब आपने पहले भाग में पढ़ा। तो अब आगे का भाग पढ़ते हैं। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। लेखक को हैरानी हुई कि ऐसी खस्ता हालत की बस सचमुच चल पड़ी थी। अब लेखक बस को गांधी जी के आंदोलनों के साथ जोड़कर बस की इस दुर्दशा पर करारा व्यंग करता है। उसे महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलनों की याद आती है। उसने असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात कही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन सन 1930 में गांधी जी के नेतृत्व में भारतीयों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। सविनय अवज्ञा का अर्थ है विनय के साथ मना करना, यानी लड़ाई झगड़ा न करके चुपचाप आज्ञा का पालन न करना। यहाँ पर भारतीयों ने अंग्रेजों के ऑर्डर्स को मानने से इनकार किया था। अब लेखक ने आंदोलन को क्यों यहाँ जोड़ा है, देखते हैं। क्योंकि बस का एक एक पुर्जा कह रहा था कि मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार नहीं हूँ, वो ड्राइवर के आदेशों का पालन नहीं कर रहे थे। कल पुर्जे कह रहे थे कि हम नहीं जाएंगे और ड्राइवर अंग्रेजों की तरह जबरदस्ती उन्हें ले जाना चाहता था, जैसे अंग्रेज अपनी बात जबरदस्ती मनवाने के लिए हमें बाध्य करते थे। और असहयोग आंदोलन किस प्रकार है कि बस का कोई भी पुर्जा किसी के साथ सहयोग नहीं कर रहा था, जैसे कभी बॉडी आगे जा रही थी तो कभी पीछे। तो ये दोनों आंदोलन की याद लेखक को इसलिए आती है। अब थोड़ी दूर चलने के बाद लेखक कह रहा है, 8-10 मील चलने के बाद सारे भेदभाव मिट गए, यानी कि अब उसको समझ में आ गया कि बस तो बस ऐसे ही चलने वाली है। और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि सीट पर वो बैठा है या सीट उन पर बैठी है। कहना कह रहे थे सीट इतनी बुरी तरह से सीट हिल रही थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे चल रहे कैसे बैठे हुए। आगे पैराग्राफ देखते हैं। एकाएक बस रुक गई, मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। देखिए यहाँ पर कितना जबरदस्त व्यंग किया लेखक ने कि बस अचानक रुक गई, चलते चलते उसकी तो हालत खराब थी, रुकने की बात ही थी तो क्यों रुकी, पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। अब छेद हो जाने से क्या होगा, पेट्रोल निकल जाएगा ना, लेकिन फिर भी ड्राइवर हिम्मत नहीं हारा। देखिए उसने क्या किया, एक बाल्टी में पेट्रोल लिया और उसको पास में रख दिया अपने सीट के, और एक नली लिया पतला से ट्यूब जैसा लिया और इंजन में वो तेल डाल के भेजने लगा। इंजन मतलब निकल रहा, धीरे धीरे इंजन में डालेगा और गाड़ी चलाएगा। तो जैसे उसने उसकी क्या देखकर उसको क्या व्यंग्य किया लेखक ने, उम्मीद किया कि जो बस के कंपनी के हिस्सेदार, क्योंकि उन्होंने बड़ी तारीफ की थी, वो भी तो हिस्सेदार थे ना उस बस के, इस टूटी फूटी बस के, तो लेखक कह रहा है कि ऐसा लग रहा था कि वो हिस्सेदार इंजन को अपनी गोद में उठाएंगे और फिर उसको नली से पेट्रोल पिलाएंगे जैसे एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। इस तरह से उन्होंने उस पर व्यंग्य किया। आगे पढ़ते हैं। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था, ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे, दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। लेकिन आगे देखते हैं, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि बस इससे टकराएगी, वो निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता, झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। अब बस की रफ्तार बहुत धीरे धीरे चल रहा था, भाई उसकी जो हालत है वो चल रही भाई बहुत बड़ी बात। तो बस की रफ्तार 15-20 मील हो गई थी। लेखक कह रहा है उसे बस के किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं था, कोई भी पार्ट ऐसा नहीं था जिससे वो सोच सके कि हाँ ठीक है मजबूत है। मतलब कभी भी ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकती थी। इतनी बुरी हालत में सोचो इस बस को चलाया जा रहा है कि ब्रेक फेल हो जाने से कितना खतरा है सोच सकते। तो वो ये भी कह रहा है कि जब बस जा रही है तो प्रकृति के दृश्य बड़े लुभावने, आसपास पेड़ है, चिड़िया चहचहा रही, हरे भरे पेड़ है, तो इसको देखकर हमें अच्छा लगता है। लेकिन लेखक यहाँ डर रहा है, क्यों? हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा है। उसे क्या लगता कि जो पेड़ आ रहा है कि अचानक बस इससे टकराएगी, बस की जो हालत है कभी भी टकरा सकता है, तो वो सोच रहा है कि बस कोई भी पेड़ निकले तो उसको दुश्मन समझता था। एक पेड़ निकल जाता तो खुश होता कि चलो ठीक ठाक निकल गई, फिर जब दूसरा पेड़ आने लगता फिर उसे डर लगता, और कभी अगर कोई झील नदी कुछ दिख जाता तो उसे लगता है कि अगर बस का ये फेल हुआ तो ये पक्का बस इसमें गोता लगाएगी, मतलब बस इसमें गिरेगी, इतनी उसकी बस की हालत खराब है। लेकिन फिर भी लोग हिम्मत करके उसमें बैठ के सफर कर रहे हैं। फिर लेखक कहता एकाएक बस फिर रुकी, भाई पेट्रोल पिलाकर किसी तरह से उसको नली डालकर चलाया जा रहा था, अब अचानक से बस फिर रुक गई। लेकिन ड्राइवर हिम्मत नहीं हार रहा है, ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तफाक की बात है। देखो बस फिर से रुक गई, एकाएक मैंने अचानक फिर से रुक गई। अब ड्राइवर किसी भी तरह से हिम्मत नहीं हारने वाला, उसने फिर से तरकीबें शुरू की कि बस को चलाने के लिए, मतलब वो नहीं मानने को तैयार है कि बस खराब है या बस नहीं चलेगी। बस के साथ अब फिर से सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया, जो मैंने पहले ऊपर बताया था कि गांधी जी के जो आंदोलन थे किसी बात को न मानना। तो उसने अब जब ये स्थिति देखकर कि बस के जो हिस्सेदार थे, कंपनी के जो हिस्सेदार थे, उनको तो उसको सोचना चाहिए, लेकिन वो फिर भी देखे बात को छुपा रहे, बात को दबा रहे, बोले नहीं तो बस तो फर्स्ट क्लास है, ये तो इत्तफाक की बात है। इत्तफाक तो समझते हैं जिसकी कोई योजना हो, अचानक से कुछ हो गया हो, नहीं अचानक से ऐसा हो गया ऐसा नहीं है, बस तो फर्स्ट क्लास है, बस तो बड़ी अच्छी है। आप सोच के देखिए इतनी कस्ता हालत बस की भी बराबर वो तारीफ किए जा रहे। आगे पढ़ते हैं। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानी हो रही थी कि इस बेचारी पर हम लदकर चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अब लेखक कह रहे छीण चांदनी, यानी चांदनी बहुत तेज चांदनी, बड़ी धीमी धीमी चांदनी, फुल मून के बाद जो धीरे धीरे चांदनी की रात कम होने लगती है, रोशनी चांद की कम होने लगती है, उसके बाद की बात कर रहा है कि छीण चांदनी में हल्की हल्की चांद की रोशनी है, उसके नीचे वो बस खड़ी थी, एक पेड़ की छाया थी, उसके नीचे खड़ी थी बच्चों की छाया। उसको देखकर बड़ा ही दया आ रही थी, दयनीय स्थिति, यानी लेखक कह रहा उस बस को देखकर दया आ रही थी, जैसे क्या लग रहा था कोई वृद्धा कोई बूढ़ी औरत थक कर बैठ गई हो, बोल रही आ हमसे चला नहीं जाता। इसके बाद लेखक कह रहा हमें बड़ी ग्लानी होने लगी, ग्लानी मतलब अफसोस करना, दुख होना, कि मतलब किसी काम को करने के बाद अंदर एक इंग्लिश एक वर्ड है ना गिल्ट जैसा उनके अंदर होने लगा, कि हमें बड़ी दुख लग रहा था, अफसोस हो रहा था कि हम बेकार इस पर लद कर चले आ रहे, इससे तकलीफ दे रही है, तो चलने के लायक नहीं, एक तो बूढ़ी औरत है उस पर हम चढ़ जाएंगे तो कितना तकलीफ होगा उसे। तो वही वो कहना चाह रहे हैं कि हमें बड़ा दुख हो रहा था, बड़ा अफसोस हो रहा था, जैसे हम इस पर जबरदस्ती लद कर आ रहे, और अगर इसका प्राणांत हो गया, अगर ये मर गई, जैसे बूढ़ी औरत मर गई या बूढ़ी बस की हालत पूरी तरह से बिगड़ गया, यानी कि वो ना चले एकदम, तो क्या होगा इस बियाबान, बियाबान मतलब सुनसान, सुनसान जगह पर हमको उसकी अंत्येष्टि, अंत्येष्टि अंतिम क्रिया जो होती है मरने के बाद जो की जाती है उसको अंत्येष्टि कहते हैं, तो इस बस की हमें अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, यानी इसकी अंतिम क्रिया भी हमें इस सुनसान जगह पर करना पड़ेगा। तो आगे पढ़ते हैं, हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई, धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी, चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी, आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र नहीं रही। अब बस रुक गई, लेकिन मैंने कहा ना ड्राइवर किसी भी तरह से हिम्मत नहीं हार रहा है, तो उसने फिर से कोशिश की, इधर हिस्सेदार साहब आए जो बस के हिस्सेदार थे, उन्होंने क्या क्या इंजन खोला, कुछ कुछ उसका सुधारा, यानी उसको ठीक करने की कोशिश की, अब फिर से बस आगे चली, लेकिन अब उसकी स्पीड उसकी चाल बिल्कुल कम हो गई, लेकिन चल रही थी बस। अब धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी, वृद्धा मतलब बूढ़ी, यहाँ पर यहाँ तो बस के लिए कहा गया, बस कोई बूढ़ी औरत उसने माना लेखक ने, तो आंखों की ज्योति जाने लगी मतलब हेडलाइट्स, जो बस की हेडलाइट्स है वो भी खराब हो गए। अब वो खराब हो गए तो आप सोच के देखिए रात में कितना मुश्किल है बस चला, लेकिन चांदनी थी, हल्की चांदनी थी, तो चांदनी रात जो धीरे धीरे चांद की जो रोशनी थी उसमें बस जैसे टटोल टटोल कर धीरे धीरे रेंग रही थी, रेंगना तो समझ में आ रहा ना, थोड़ा हल्के हल्के चलना, जैसे सांप वगैरह रेंगते उनको बोलते ना, इस तरह से वो चल रहे थे। आगे या पीछे से अगर कोई गाड़ी आती तो जैसे वो रुक जाती, कहती भाई तुम निकल जाओ, हमारी तो अब उम्र रही नहीं, मतलब हम अब तुम्हारे रेस में नहीं आ सकते, वो खुद ही खतरा भाव कर जैसे खड़ी हो जाती, नहीं भाई तुम निकल जाओ। तो बस की ऐसी हालत थी, हेडलाइट्स भी जा चुके हैं। अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं, एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया, वह बहुत जोर से हिलकर थम गई, अगर स्पीड में होती तो उछल कर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा, वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है, सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है, इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए, अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते वो महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए अपने प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। अब लेखक कह रहा है कि बस एक पुलिया के ऊपर पहुंची थी, पुलिया मतलब छोटा सा ब्रिज जैसा समझ लो, पुल के ऊपर, कि एक टायर फिस करके बैठ गया, टायर पंचर हो गया मतलब, और बस जोर से हिली और रुक गई। अब लेखक ये कह रहा है कि अगर बस स्पीड में होती, अगर तेज चल रही होती, जोर से चल रही होती, तो पक्का उस तरह से रुकने पर टायर पंचर होने से उछल कर सीधा नाले में गिर जाती। और नाले में गिरने के बाद, बड़ा सा नाला है, जब उस पर पुल बनाया गया, मतलब काफी बड़ा नाला है, तो आप सोच सकते हैं कि क्या होता। तो लेखक कह रहा है उस समय उसने बड़े ही श्रद्धा भाव से पहली बार कंपनी के हिस्सेदार की तरफ देखा। वो जानता था अब कंपनी का हिस्सेदार कि टायर की क्या हालत है, फिर भी वो खुद भी अपनी जान हथेली पे लेके इस पे यात्रा कर रहा है। उसको पता था कि ये बस की हालत क्या है और कुछ भी हो सकता है इस बस में। तो लेखक कह रहा उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है, यानी कि त्याग की ऐसी जो भावना, दुर्लभ मतलब नहीं मिलना, आसानी से नहीं मिलना, तो ऐसी भावना बहुत मुश्किल से मिलती है। फिर उस पे व्यंग करते हुए कह रहे हैं, सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान का, भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। मतलब जो इतना साहसी है, मरने के लिए तैयार हो गया, इसी बस में सफर कर रहा हमारे साथ, तो इसका और कहीं उपयोग होना चाहिए। मतलब ये कोई क्रांतिकारी नेता होना चाहिए था कि भाई त्याग करने को तैयार, जो बड़े बड़े भाषण देते हैं, ऐसा होना चाहिए था कि किसी भी हालत में अपना, हमारी व्यवस्था में अगर कुछ कमी है तो नेता लोग उसको छुपाने की कोशिश करते हैं और बराबर उसके लिए बोलते, नहीं सब ठीक है, सब ठीक है। वही बात यहाँ पर लेखक ने कही है कि जैसे क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। कह रहे अगर ये बस नाले में गिर पड़ती और सब मर जाते, तो ऊपर जब जाते भगवान के पास, तो शायद भगवान भी बाहें पसार कर उसका स्वागत करता कि देखो ये एक महान आदमी है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। इस तरह से लेखक इन पे व्यंग करता है। आगे का पैराग्राफ देखते हैं, अनुच्छेद, दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब चलो एक और टायर था लेकिन वो भी घिसा हुआ था। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और सीधे इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए, हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। अब उसने जो टायर बदले, चलो टायर था लेकिन वो भी घिसा हुआ था, टायर बदल कर बस फिर से चली। लेकिन लेखक कह रहा है कि अब हम लोगों ने समय पर पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, यानी पन्ना वापस जो कभी पहुंचेंगे उसकी तो छोड़ ही दी थी उम्मीद। पन्ने क्या मतलब, कहीं भी पहुंचने की उम्मीद उन्होंने छोड़ दी थी। लेखक को क्या लग रहा था कि अब सारी जिंदगी इस बस में ही गुजारनी है और इसी बस में ही रहते रहते मर जाना है। उस लोक को प्रयाण करना, प्रयाण करना मतलब जाना, उस लोक यानी भगवान के पास, इसी बस में बैठे बैठे सीधे ऊपर जाना है। इस पृथ्वी पर उसका कोई मंजिल नहीं, बस का ऐसी हालत है कि ये बस तो किसी भी हालत में मंजिल पर, मंजिल मतलब जहाँ उसे जाना हो, गंतव्य, वहाँ पर कभी भी नहीं पहुँच पाएगी। अब जो इसके पहले जो उनके तनाव थे, परेशानी थी, जैसे अब उस परिस्थिति से उन्होंने समझौता कर लिया कि अब जो है यही है, और उसी में उन्होंने हंसी मजाक शुरू कर लिया कि अब जो भी है हमारे, उनकी बेताबी, उनके जो तनाव थे, सब खत्म हो गए। अब बस में बड़े इत्मीनान से पैर भर पसार कर बैठ गए, जो होगा देखा जाएगा। और फिर से सब लोग हंसी मजाक करने लगे क्योंकि उन्हें लगा कि रोकर तनाव करके क्या फायदा, जो होगा सो होगा, अब कुछ कर ही नहीं सकते, बियाबान जंगल में फंसे हुए। तो इसीलिए उनको लगा कि जो है जैसी परिस्थिति उसके साथ समझौता करके इसी में खुशी ढूंढना चाहिए। तो बच्चों ये आपका पाठ हुआ यहाँ पर। हम आगे के भाग में इसके अभ्यास प्रश्न और शब्दार्थ ये सब पढ़ेंगे। कक्षा 8 के तीसरे पाठ बस की यात्रा का भाग 3। इस भाग में हम जो भी पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न उत्तर हैं, शब्दार्थ हैं, भाषा की बात है, इन सभी का अध्ययन करेंगे। तो पहले शब्दार्थ देख लेते हैं बच्चों। वयोवृद्ध बहुत बूढ़ा या बूढ़ी, अनुभव तजुर्बा, श्रद्धा जिसके लिए हमारे मन में आदर भाव रहता है उसके लिए कहते हैं श्रद्धा, सदियों से यानी युगों से बहुत पुराने समय से, हिस्सेदार जो भागीदार होते हैं, पार्टनरशिप जिसको बोल सकते हैं आप, नवेली मतलब नई, विश्वसनीय विश्वास के जिसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं उसको विश्वसनीय, रंक भिखारी फकीर साधु, मैंने कहा था मुस्लिम समुदाय के जब साधु लोग को विशेष करके उनको फकीर बुलाया जाता है, कुछ करना आगे बढ़ना, निमित्त कोई भी कारण कोई भी उद्देश्य हो कोई भी बहाना हो उसको निमित्त बोलेंगे, असहयोग साथ न देना, सविनय विनय पूर्वक, अवज्ञा आज्ञा न मानना, दौर युग, बॉडी यानी ढांचा बस का जो पूरा शरीर बनाया ढांचा उसको बॉडी बोला है, इत्तेफाक संयोग जिसकी पहले से कोई योजना ना हो, क्षीण कमजोर, ग्लानी स्वयं पर शर्म महसूस करना यानी अफसोस करना कि मैंने ऐसा क्यों किया, अंत्येष्टि अंतिम किया कर यानी मरने के बाद जो काम किया जाता है कि कार्य किया जाता है उसे अंत्येष्टि कहते हैं, बियाबान सुनसान, उत्सर्ग यानी त्याग की भावना, दुर्लभ जो आसानी से ना मिले कठिनता से प्राप्त होने वाला, प्रयाण जाना, इत्मीनान निश्चित। इसके आगे हम अभ्यास प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा, लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? लेखक के मन में उस कंपनी के भागीदार के लिए श्रद्धा इसलिए जाग गई क्योंकि वो बिल्कुल खटारा बस को चलाने का साहस जुटा रहे थे, यही नहीं वो अपनी पुरानी खटारा बस की खूब तारीफ भी कर रहे थे, पुराने घिसे हुए टायर बस में लगाकर यात्रियों की जान खतरे में डाल रहे थे। ये व्यंग्य है प्रश्न को। दूसरा प्रश्न, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते, लोगों ने ये सलाह क्यों दी? लोगों ने इस शाम वाली बस से न जाने की सलाह इसलिए दी क्योंकि बस की हालत बहुत खराब थी, बस कहीं भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती थी, बस इतनी पुरानी थी कि कहीं भी कभी भी रुक सकती थी, इस प्रकार की बस में जाने से अपने गंतव्य तक पहुंचना मुश्किल होता है। प्रश्न तीन, ऐसा लगा कि जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा? इसका उत्तर है, जब बस का इंजन स्टार्ट हुआ तो पूरी बस बुरी तरह से हिलने लगी, बस स्टार्ट होने से कंपन इंजन में होना चाहिए था पर यहाँ पर तो पूरी बस हिल रही थी और खिड़कियों के कांच भी हिल हिल कर जोर से आवाज कर रहे थे, पूरी बस इतना आवाज कर रही थी और इतना हिल रही थी कि लेखक को लगा कि पूरी बस ही इंजन है। आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न है, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है, लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? उत्तर है, बस की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि देखकर लगता ही नहीं था कि यह बस चल सकती है, और उसके बाद कंपनी के हिस्सेदार का यह कहना कि वहाँ चलती है, इस बस की जर्जर अवस्था को देखकर लेखक को बिल्कुल विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वह, इसीलिए वो हैरान था कि ये बस चलती है। पांचवा प्रश्न है, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? उत्तर है, लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था क्योंकि उसे हर पेड़ से डर लग रहा था, बस की हालत इतनी बुरी थी कि कभी भी ब्रेक फेल हो सकता था और बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा सकती थी। पाठ से आगे में पहला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में किस उद्देश्य से और कब हुआ था? इतिहास की पुस्तकों के आधार पर लिखिए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन सन 1930 में गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजी सरकार के आदेशों का पालन न करने के लिए किया गया था, अंग्रेजी सरकार के साथ असहयोग करने के लिए किया गया था। 12 मार्च 1930 को इसी कड़ी में दांडी मार्च भी किया गया था अंग्रेजों द्वारा नमक पर टैक्स लगाने के लिए। अगला प्रश्न, पाठ से आगे का दूसरा प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया? लिखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन का अर्थ है विनय पूर्वक आदेश को न मानना तथा असहयोग का अर्थ सहयोग न करना। बस की हालत इतनी बुरी थी कि बस का एक एक पुर्जा अपने हिसाब से चल रहा था। वह चालक यानी ड्राइवर की बात नहीं मान रहा था। अगर ड्राइवर दाएं मुड़ना चाहता तो बस वहीं हो जाना चाहती। बड़ी कठिनाई से बस चल रही थी। दूसरा आंदोलन को अगर यदि हम माने असहयोग की बात करें तो कोई भी पुर्जा किसी के साथ सहयोग नहीं कर रहा था। कभी सीट आगे भाग रही थी तो कभी पीछे। बस के सभी कलपुर्जे एक दूसरे से असहयोग कर रहे थे। इसलिए व्यंग्यकार ने इन दोनों आंदोलनों का उपयोग व्यंग्य के रूप में किया है। प्रश्न 3 है, आप अपनी किसी यात्रा के खट्टे मीठे अनुभव को याद करते हुए लिखिए। ये तो आपको बच्चों स्वयं लिखना है। मन बहलाना में है, अनुमान कीजिए यदि बस जीवित प्राणी होती, बोल सकती, तो अपनी बुरी हालत और भारी बोझ के कष्ट को किन शब्दों में व्यक्त करती। लिखिए, ये भी आपको कल्पना करके सोचकर अनुमान लगाकर लिखना है, तो ये भी आपको खुद करना है। तो आगे चलते हैं। तो अभी बच्चों आपके पाठ का सब बहुत ही महत्वपूर्ण भाग भाषा की बात। इसमें पहला प्रश्न है, बस वश बस तीन शब्द है। इसमें बस एक तो बस सवारी के अर्थ में और दूसरा अगर बस कहे या उसको बस भी बोलते लोग अधीनता के अर्थ में और तीसरा बस लेते पर्याप्त यानी काफी। अब इससे उदाहरण भी दिया, जैसे बस से चलना होगा, यह बात मेरे वश में नहीं है, अब बस करो। इसी तरह के अर्थ से आपको तीन प्रकार से वाक्य बनाने हैं। जैसे पहले ले लेते हैं, पहला बस ले लेते हैं, प्रकृति को हम अपने वश में नहीं कर सकते यानी अपने बस में नहीं कर सकते यानी अपने अधीन नहीं कर सकते। इसी वश में तीन वाक्य हैं। जादूगर ने दर्शकों को अपने वश में कर लिया, हो गया। अब दूसरा है बस जिससे हम जाते हैं यात्रा करते हैं, उसको ले लेते हैं, मुझे कल सुबह की बस से जाना है। और इसी बस को और एक दूसरा है जो खाने के समय बोलते हैं नहीं नहीं और नहीं चाहिए इस तरह से, तो उसके कह सकते हैं बस अब और नहीं खा सकते। तीसरे अर्थ में करते हैं, बस करो अब ज्यादा नहीं बोल सकते मत बोलो, ये भी पर्याप्त के अर्थ में हो गया। और एक और बस का जो जाने के उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, बस अब और नहीं चला जाता। तो इस तरह से तीनों अर्थ में हमने वाक्य बना लिए। आप अपनी तरफ से कुछ और भी बना सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, हम 5 मित्र ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। ऊपर दिए गए वाक्यों में ने की से आदि वाक्यों के दो शब्दों को भी संबंध स्थापित कर रहे हैं, ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। इसी तरह दो वाक्यों के एक साथ जोड़ने के लिए की का प्रयोग भी होता है। कहानी में से दोनों इस प्रकार के 4 वाक्यों को चुनिए। आपने पहले भी बच्चों पिछली कक्षाओं में भी कारक पढ़ा है तो उसी के ऊपर ही आधारित है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसको हमने तो इस तरह से बनाया है लेकिन आप अपने तरफ से अलग से भी दूसरी तरह से भी सोच सकते हैं और भी वाक्य ढूंढ सकते हैं। जैसे पहला हम ले लेते हैं, कंपनी के हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे, यहाँ पर से हमने जोड़ा। डॉक्टर मित्र ने कहा, ये ने जो है कारक में आएगा। फिर चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे दैनी लग रही थी, यहाँ पर की का प्रयोग किया। जितने भी रेखांकित थे वो हम कारक, उसको हम कारक कहेंगे। वृद्धा की आंखों की रोशनी जाने लगी, यहाँ पर भी की देखिए हमने प्रयोग किया है, ढूंढा है की के लिए। अब एक छोटी की मात्रा वाला की भी देखते हैं जो योजक है। हम लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी शाम वाली बस से सफर नहीं करते। दूसरा लेते, हमें लग रहा था कि हमारे सीट के नीचे इंजन है, यहाँ पे दो जगह मैंने रेखांकित किया है। तीसरा है, मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद है, यहाँ पर भी देखिए की के अंदर हमने रेखांकित किया है। कभी लगता है कि यहाँ पर भी सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही। तो ये तो हमने कारक के प्रयोग आपको दिखाए, आप अपने तरीके से और भी ढूंढ के लिख सकते हैं। प्रश्न 3, हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। तो दिए गए वाक्य में आई सरकना और रेंगना जैसी क्रियाएं एकत्र कीजिए जो गति के लिए प्रयुक्त होती, जैसे घूमना इत्यादि, उन्हें वाक्य में प्रयोग करना आपको करके दिखाना है। जैसे हम उत्तर लेते हैं, गति के लिए प्रयोग होने वाले कुछ क्रियाएं उनके वाक्य प्रयोग इस प्रकार है, दौड़ना, फौज में बहाल होने के लिए उम्मीदवार को दौड़ना आवश्यक है, अब टहलना ले लेते हैं। प्रातःकाल टहलना स्वस्थ रहने के लिए सर्वोत्तम उपाय है। चलना बुढ़ापे के कारण बुढ़िया का चलना बहुत मुश्किल था, तो ये हमने तीन प्रकार की क्रियाएं इस्तेमाल करके दिखाई, आप अपने अलग तरीके से लिख सकते। अगला प्रश्न देखते हैं, कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। इस वाक्य में बच शब्द को दो तरह से प्रयोग किया गया, एक शेष के लिए अर्थ में और दूसरा सुरक्षा के अर्थ। नीचे दिए गए शब्दों को वाक्य में प्रयोग करके देखिए। ध्यान रहे एक ही वाक्य में दो बार आना चाहिए एक शब्द जो है, और शब्दों के लेकिन अर्थ अलग अलग होने चाहिए बदले हुए। जैसे हमने बनाया है जल, जल के बिना यह पृथ्वी आग के समान जल सकती है। फल, फल खाने से अच्छे स्वास्थ्य का फल मिलता है, दो बार फल आया लेकिन दोनों के अर्थ अलग है। हार, विरोधी टीम के मैच हार जाने के बाद जीतने वाली टीम को हार पहनाया गया। तो आपने देख लिया कि उसी एक ही शब्द को हमने दो तरह से प्रयोग किया अलग अलग अर्थों में। फिर प्रश्न पांच, बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में दो शब्द फर्स्ट और क्लास, यहाँ क्लास का विशेषण है फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट संख्या है, फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। जैसे महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता है महान, यह गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक और गुणवाचक के दो दो उदाहरण खोज कर लिखिए। देखिए आपको मैंने पहले बताया था पिछली कक्षाओं में, विशेषण चार प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। यहाँ पर सिर्फ दो विशेषणों के उदाहरण दिए हैं, एक संख्यावाचक का और एक गुणवाचक का, तो बस इन्हीं दो को आपको ढूंढकर अभी लिखना है। गुणवाचक विशेषण समझदार, वृद्धावस्था, अनुभवी, सच्चा आदमी आदि। संख्यावाचक में पांच मित्र, आठ दस मील, फर्स्ट क्लास, दूसरा टायर, ये सिर्फ पाठ से लिए गए, इसीलिए आपको अलग से नहीं लिखना, सिर्फ पाठ से ढूंढकर लिखने हैं। आगे चलते हैं, तो यहाँ पर आपका पाठ समाप्त हो जाता है बच्चों। जो भी आपको दिया गया है अभ्यास के लिए उसका अभ्यास कीजिए, और साथ में आपको और भी कार्यपत्रक कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे, उनको भी आप हल करेंगे। धन्यवाद।